श्लोक नंबर 17 पृष्ठ संख्या 234। अंतः करण तत्त्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको वयम् पत्यम् इति पठ्यते वासन्ति इतोऽपि देवः पश्यतु। हिंदी। पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने से के कारण यह एक जो सुख की गांठ है उसे ही संतान कहा जाता है। वासंती। इधर भी महाराज देख दंपत्योह अंतःकरण तत्त्वस्य स्नेह संशयात् अयम् एकः आनंद ग्रंथि अपत्यम् इति पठ्यते। शब्दार्थ। दंपत्यो पति और पत्नी के अंतःकरण तत्त्वस्य हृदय रूपी तत्व के स्नेह संशयात् प्रेम का आश्रय होने के कारण अयम् यह एकः एक आनंद ग्रंथि सुख की गांठ एव हि अपत्य संतान इति ऐसा पठ्यते कहा गया है। ठीक है। अंतःकरण तत्त्वस्य इति दंपत्यो अंतःकरण तत्त्वस्य अंतःकरण रूप तत्त्वस्य चित्त पदार्थस्य इत्यर्थः स्नेह संश्रयात् स्नेहम् अस्य ज्ञाया पत्य वैवास्वल्प्यस्य संश्रयात् एकास्पदत्वाद् इत्यर्थः अत्र हेतौ पञ्चमी अयम् एषः एकः अद्वितीय आनंद ग्रंथि आनंदः आनंदमय ग्रंथि बंधनम् आपत्यम् संतिति इति इत्थम् पठ्यते कथ्यते अत्र परिणामोलंकारः छन्दस्वरूप अनुष्टुप छन्दः। टिप्पणी। अंतःकरण तत्त्वस्य अंतःकरण का अर्थ है अंदर की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को दर्शन और अंतःकरण कहा गया है किंतु यहाँ पर इसका केवल हृदय तथा हृदय अर्थ ही अभिप्रेत है। दंपत्यो जायाच पतिश्चेति दंपति द्वंद समास होकर यह रूप बनता है। जाया शब्द को निपातन से दम और जम आदेश विकल्प से हो जाते हैं अतः दंपति और जायायति ये तीनों रूप बनते हैं। संत्रयात समुपसर्ग श्री धातु वच प्रत्येक भक्ति कार्यम अपत्यम न पतति वंशो एन जातेन तदपत्यम नय समास पक प्लस पक से यत प्लस भक्ति कार्यम। इस श्लोक में प्रयुक्त छंद का नाम है अनुष्टुप। छंद का लक्षण श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्ट पादयो हर्षवम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। श्लोक नंबर 18 पृष्ठ संख्या 226। अनुदिवसम अवर्ध्यत पत्प्रियाते यमचीर निर्गतम मुग्धलोगम हरम मणिमुकुटयोक्षिखः कदम्बे नदति स ये सह बधु सखा शिखंडी। सीता ब्रैकेट सको उत्सुक्य स्नेहाश्रम ब्रैकेट बंद एस सह राम मोदस्व वत्स वयम मध्य वरहामहे वर्धामहे। सीता एवं भवत। हिंदी। नवीन निकले हुए मनोहर और चंचल पंख वाले जिस मोर को आपकी प्रिया सीता ने प्रतिदिन बढ़ाया था वही यह मोर अपनी बधु मोरनी के साथ होकर कदम वृक्ष और ऊपर के शिखा को ऊपर उठाए हुए मणि जटित मुकुट की तरह शब्द कर रहा है। सीता उत्सुकता और स्नेह की आंसुओं के साथ यह वही है। राम प्रसन्न रहो बेटा हम लोग आज बढ़ रहे हैं। सीता ऐसा ही हो। अन्वय अचीर निर्गत मुग्धलो हर बहरम वरहम यमते प्रिया अनुदिवसम अवर्धत सह एसह शिखंडी वधु सख सन कदम्बे उखिल मणिमुकुट इव नदति। शब्दार्थ अचीर निर्गत मुग्धलो अर्वहम नवीन निकले हुए मनोहर और चंचल पंख वाले यम जिसको थे आपकी प्रिया पत्नी के अनुमितिता पत्नी अवर्धम यत बढ़ाया था पाला पोसा था सह वही एसह वह शिखंडी मोर मोर वधु सख अपनी वधु के साथ सन होकर कदम बे कदम वृक्ष के ऊपर उक्षिक शिखा को ऊपर उठाए मणिमुकुट मणिजटित मुकुट की इव तरह नदती शिखा शब्द कर रहा है, कुक रहा है। ठीक है, अनुदिवसम इति अचीर निर्गतम मुग्धलोल वहरम अचीर सद्यो निर्गतम उदगतम मुग्धम मनोहरम लोलम चंचलम यत वहरम पिच्छम पिच्छवर हे नपुंसके इत्यमर यस्यः तम यम मनुमर मयूरम ते तव प्रियया प्रियतमा सीता अनुदिवसम प्रति दीनम दीनवर्धत अपोषयत स एषः सो अयम शिखंडी मयूरः वधु सखः वध्वाः पत्याः पत्न्याः सखाः सहचरः सन् कदम्बे कदम्ब वृक्षे उक्षिकः सुदगता शिखा किरणाः यस्य स तादृशः मणिमुकुटः मणि आसित मुकुट इति मणिमुकुटः रत्नः किरीटः इव गाथा यथा नदतिः कुञ्जति के काम करोति इत्यर्थः उपमालंकार पुष्पिताग्ना छन्दः टिप्पणी निर्गत ले उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय भक्ति कार्य आदि शिखंड शिखंड अस्ति अस्य इति शिखंड इनी भक्ति कार्य। इस श्लोक में उपमा अलंकार और पुष्पितागना छंद है। छंद का लक्षण अयुजिन युगरफेतो यकारो युजी च नजौ जगरसाश्च जरगाश्च पुष्पितागना शब्दात् सकौतुस्नेहास्य उत्सुकता और स्नेह की आंसुओं के साथ ऐसा यह सह वही अस्ति है। वत्स बेटा वर्धा महे बढ़ रहे हैं, प्रसन्न हो कर रहे हैं एवं भवतु ऐसा ही हो। टीका सीता इति सक उत्सुक स्नेहाश्रम कौतुकम उत्कंठा च स्नेहाश्रश्च इति कौतुक स्नेह ताभ्याम सहितम येष स इति प्रत्यभिज्ञा वर्धा महे विधि मम अनुभावम एवं भवतु यथा भवाम वदति त भवतु।
श्लोक नंबर 19 पृष्ठ संख्या 226 राम भ्रामिशो कृत पोटान्मन पोटांतर मंडलम आवृति चक्षुः प्रचलित शटोल भ्रुतांडवै मंडन्यन्त्या करकिशलयताम मूर्धया नर्त्यमानं सुतमेव मनसा त्वाम् वत्सलेन स्मरामि हन्त तिर्यग्योऽपि परिचयम् अरुन्धते कतिपये कुसुम उद्गमः कदम्ब प्रियतमया परिवर्धितोऽयमासीत सीता शास्तरम् सुष्ठु प्रतिज्ञातम् आर्यपुत्रेण राम प्रसन्न रहो बेटा, हम लोग आज बढ़ रहे हैं। सीता ऐसा ही हो। राम मोर के नृत्य की बेला में चक्राकार भ्रमणों के समय नेत्रावरणों के मध्य गोलाई से घूमते हुए नेत्रों प्रकट तारों प्रकटवंत को अति चंचल और सुंदर भावों के तांडव नृत्य से सुशोभित करने वाली सुंदरी सीता के द्वारा पल्लव के सदृश हाथों की तालियों से नचाए जाते हुए तुम्हें बेटे की तरह स्नेह भरे मन से स्मरण कर रहा हूँ। विशेष कृत पुटा सीता जी ताली बजा बजा कर मोर को नचाती थी। मयूर चक्राकार नाच रहा था, उसके साथ ही जानकी की आंखों की पुतलियां घूम रही थी। पुतलियों के साथ उनकी चंचल भौहें भी थिरक रही थी। उस समय सीता के मुखमंडल की शोभा अपलक नेत्रों से राम निरख रहे थे, उसी का वर्णन यहाँ वे कर रहे हैं। वह पशु पक्षी भी परिचय को निभाते हैं। कुछ विकसित फूलों से युक्त यह कदम प्रियतमा सीता के द्वारा पाल कर बड़ा किया गया था। सीता आंखों में आंसू भरकर ठीक पहचाना यार ये पुत्र ने। पुटांत मंडला वृत्ति चक्षु प्रचलित चटुल भ्रुतांडवै मंडत यंत्या मुग्ध्या करकिशलय तालैह नर्त्यम मानम त्वाम मुतम सुतम इव वत्सलेन मनसा यंत्या मुग्धया करकिशलय तालैह नर्त्यमानम त्वाम सुतम इव वत्सलेन मनसा स्मरामि। शब्दार्थ भ्रमी सुचत्रा चक्राकार भ्रमणों के समय
कृत पुटांतर मंडलावृति चक्षु नेत्रावरणों के मध्य गोलाई से घूमते हुए नेत्रों
तारों को प्रसन्न
भ्रतांडव अति चंचल और सुंदर भावों के तांडव नृत्य से मंडंत्या सुशोभित करने वाली मुग्ध्या सुंदरी सीता के द्वारा करकिसलयतालयः पल्लव के सदृश हाथों की तालियों से नर्तमानम नचाए जाते हुए त्वाम तुम्हें सुतम इव बेटे की तरह वत्सलेन स्नेह भरे मनसा मन से स्मरामि स्मरण कर रहा हूँ। भ्रमेशु मयूरस्य चक्राकार भ्रमणेशु मयूरस्य मंडलाकार नाट्यचारिस्विति यावत् कृत पृटान्त मंडलम वृति चक्षुः कृता विहिता पुटे अन्तः पुटान्तः पुटान्तः मंडलावृतिः मंडलाकारेण आवर्तनम् येन तादृशं चक्षुः नेत्रं प्रचलितं चटुल भ्रुतांडवैः प्रचलितै अतिचञ्चले चटुले सुंदरे ये भुव तयोस्तांडवैः वृत्त्याकारेण चालनैः मंडयन्त्या आलंग कुर्वन्त्या मुग्धया सुंदरिया सीतया करकिशलयतालैः करकिशलयोः हस्तपल्लवयुस्तालैः कालक्रियामान शब्दैः नर्त्यमानं कार्यमाणं नृत्यं नृत्गिता विक्षेप इत्यस्माद्धातु अणिजन्तात् कर्मणि सानच् त्वां मयूरं सुतम् इव पुत्रम् इव वत्सलेन स्नेहपूर्णेन मनसा चेतसा स्मरामि चिन्तायामि। अत्र उपमालङ्कारः मालिनी छन्दः टिप्पणी मंडयन्त्या मंडौ प्लस स्वार्थेणिच् सर्त्री ज्ञिप्रत्यय तृतीयैकवचनं विभक्ति कार्यम् मुग्धया मुह प्लस कता प्लस चाप विभक्ति कार्यम् नर्त्यमानम् नृत् प्लस ऋष प्लस कर्मवाच्य स्थानच प्रत्यय द्वितीयैकवचनं विभक्ति कार्यम्। इस श्लोक में सुतम एव स्मरामि में ईव के द्वारा उपमालंकार तथा मालिनी छंद है। छंद का लक्षण नानामाया युतेयम् मालिनी भोगी लोकै श्लोक नंबर 20 पृष्ठ संख्या 228। स्मरते गिरिमयूर एषः दिव्या स्वजनैवात्र यतः प्रमोदम् इति वासन्ति। अत्र दावत् तावदाशनम् परिग्रहम् करोतु देवः एतत्तु देवस्याश्रमम् ब्रैकेट राम उपविशति राम ब्रैकेट बंद वासन्ति हिंदी। यह पर्वतीय मयूर देवी सीता का स्मरण कर रहा है क्योंकि इस कदम के वृक्ष पर स्वजन की भांति आनंद को प्राप्त कर रहा है। विशेष सीता ने मयूर को पाला था, यह सीता के पीछे पीछे चला करता था। सीता मयूर के साथ जाकर कदम को सींचती थी सहलाती थी। यह सब मयूर देखा करता था। मयूर का भी स्नेह उस वृक्ष से हो गया था। पूर्व की भांति आज भी यह कदम पर बैठकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इससे प्रतीत होता है कि वह जानकी का स्मरण कर रहा है। वासंती यहाँ पहले आसन ग्रहण करें महाराज, यह तो आपका ही आश्रम है। प्रकट राम बैठते हैं। प्रकट बंद अन्वय कतिपय कुसुमोद्गम अयम कदम्बम प्रियतमाया परिवर्धित आसित एषः गिरिमयूरः दिव्याः स्मरति यतः अत्र स्वजने इव प्रमोदम् इति एति शब्दः। कतिपय कुसुमोद्गम कुछ विकसित फूलों से युक्त अयम यह कदम्ब प्रियतमा सीता के द्वारा परिवर्धित पाल कर बड़ा किया गया आसित था। एषः यह गिरिमयूरः पर्वतीय मूर दिव्या प्रिया सीता का स्मरति स्मरण कर रहा है। यतः क्योंकि अत्र इस कदम के वृक्ष पर स्वजन एव स्वजन की भांति प्रमोदम आनंद को एति प्राप्त कर रहा है। टीका कतिपय इत्यादि कतिपय कुसुमोद्गम कतिपया नाम कियताम स्वल्पम इत्यर्थः कुसुमानाम पुष्पाणाम उद्गमम उत्पत्तिर्यस्मिन् सह तादृशी अयम् एषः कदम्बः नीपः प्रियतमया सीतया वर्धित कृत संवर्धनम् आसित अभूत एषः अयम् गिरिमयूरः पर्वतीयो मयूरदेव्या प्रियाया सीता सीताम इत्यर्थः अधिगर्थदेव्याः कर्मणि इति कर्मणि षष्ठी स्मरति स्मरणम् करोति इति स्मरति यतः यस्मात् यत्र अस्मिन् कदम्बवृक्षे स्वजने आत्मबान्धवे इव यथा प्रमोदम् हर्षम् यति प्राप्नोति हर्षानुभूति करोतीत्यर्थः अतः स्त्रियञ्चोऽपि परिचयम् अरुन्धन्ते इति समर्थितम् जायते अत्र उपमालङ्कारः छन्दस्तु पुष्पिताग्नः टिप्पणी कतिपय इसका विग्रह दो प्रकार से होता है कतिपयानाम कुसुमानाम उद्गमो यस्मिन् सह व्याधिकरण बहुब्रीहि यद्यपि पोटा युवती सूत्र के अनुसार जातिवाचक शब्द समूह के साथ समास होने से कतिपय शब्द का पर्णिपात होकर कुसुम कतिपय रूप बनना चाहिए किंतु इस सूत्र के नियम को नित्य नहीं माना जा गया है। तुलना कतिपयादि संस्थाहीन हंसा दसारणा मेघदूत कतिपया कुसुमोद्गमा यस्यः सः परिवर्धितः परोपसर्ग वृद्धधातु ऋच प्रत्यय कत प्रत्यय विभक्ति कार्यम वत्स्या प्रत्यभिज्ञातम प्रत्युपसर्ग भी धातु ज्ञा प्रत्यय कत प्रत्यय विभक्ति कार्य ज्ञा धातु कत प्रत्यय विभक्ति कार्यम। श्लोक में उपमा और काव्यलिंग अलंकार तथा पुष्पिताग्ना छंद है। छंद का लक्षण अयुजी नयुगर फेत फतो यकारो युजी च नयौ अति।
श्लोक नंबर 21 पृष्ठ संख्या 230। वासंती निरंध्र बालक दलम कदली वनम मध्यवर्तिम कांता शखस्य सयनीय शिला तलम ते अत्र स्थिता तृणाम द्वादनम गोचरेभ्यः सीता ततो हरिकर्णैः विमुच्यते स्म।
रामः
इदं शक्य अशक्यं द्रष्टुम् ब्रकेट् इत्यन्यतो रुदन् उपविशति
ब्रकेट् बन्द्।
सीता सखी वासन्ति किं त्वया कृतं मार्यपुत्रस्य मम चैतद्रश्यस्य नत्या हाधिक् हाधिक् स एव आर्यपुत्रः तदेव पञ्चवटी वनम् सैव प्रियसखी वासन्ति त एव विविध विश्रमभक्षिणो साक्षिणो गोदावरी कानुरद्याः देशा त एव जातनिर्वेश निर्विशेषा मृक्पक्षिणः पादपाश्च मम पुनर्मन्दभागया दृश्यमानमपि सर्वमे एतत् त्रास्ति इदृशो जीवलोकरूपस्य स्वरूप लोकस्य परिणामः संवृतः।
हिंदी वासंती वनवास के समय प्राण प्रिया सीता के सहित आपका यह सघन सुकोमल कदली वन के बीच में स्थित शयन करने का शिलातल है। यहाँ बैठकर सीता हरिण आदि जंगली पशुओं को घास दिया करती थी इसलिए हरिणों के द्वारा यह स्थान नहीं छोड़ा जाता था। राम यह देखना संभव नहीं है ऐसा कह कर रोते हुए दूसरी तरफ बैठ जाते हैं।
सीता हे सखी वासंती मुझे और आर्य पुत्र को यह स्थान दिखलाकर तूने क्या किया। हाय अधिकार है हाय अधिकार है वही आर्य पुत्र है वही पंचवटी है वही प्रिय सखी वासंती है विविध विश्वस्त कार्यों के साक्षी गोदावरी के वही वन प्रदेश है वे ही पुत्र तुल्य पशु पक्षी और वृक्ष हैं परंतु मुझे अभागिन के लिए दिखलाई पड़ती हुई भी वे ये सब वस्तुएं नहीं दिखाई देते हैं मेरे लिए संसार का ऐसा ही परिणाम हुआ है। वासंती अन्वय कांता सखस्यते निरंध्रम बाल कदली वन मध्यवर्ती
शयनीय शिलातलम् अस्ति। अत्र स्थिता सीता वनगोचरेभ्यः तृणम् अदातः ततः हरिणकैः न विमुच्यते स्म। शब्दार्थ: कांता सखस्य प्राण प्रिया सीता के सहित ते आपका एतत यह निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती सघन एवं सुकुमार कदली वन के बीच में स्थित शयनीय शिलातलम शयन करने का शिलातल अस्ति है। अत्र यहाँ इस स्थान पर स्थिता बैठकर बैठी हुई सीता जानकी ने वनगोचरेभ्य जंगली पशुओं को तृणम घास अदात दिया करती थी। अतः ततः इसलिए हरिणेभ्य हरिणों के द्वारा न नहीं विमुच्यते स्म छोड़ा जाता है। टीका: निरंध्रंद इत्यादि कांता सखस्य कांतायाः प्रियायाः सखावन सहचरस तस्य प्रिया सहितस्य इत्यर्थः ते तव भवत इति यावत् एतत् इदं निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती निरंध्रा अतिघनाः या बाल दल्यः कोमलरम्भाः तासां वनस्य आरण्यस्य मध्ये अन्तरे वर्तते इति वर्ती स्थितं सावरणम् इति भावः। शयनी शिलातलं सेते अस्मिन् इति शयनीयं शयनीयं च तत् शिलातलं प्रस्तरखण्ड शय्याभूत शिलाखण्ड इत्यर्थः अस्तीति क्रियाशेषः। अत्र यस्मिन् स्थाने स्थिता उपविष्टा सीता जानकी वनगोचरेभ्यः वन्यमृगेभ्यः तृणं घासम् अदात् दत्तवती ततः तस्माद् भेदो हरिणके मृगैः न विमुच्यते स्म न त्यज्यते स्म वसन्तालिका छन्दः। टिप्पणी: शयनीयम् सेते अस्मिन् इति शयनीयम् सी प्लस अनियर विभक्ति कार्यम् सीता स्थाधातु कत प्रत्यय टाप प्रत्यय विभक्ति कार्यम् हरिण कई हरिण शब्द से अनुकंपा अर्थ में कन प्रत्यय हुआ है। वसंतील का छंद का लक्षण उक्ता वसंतील का तबजा जगऊगा। शब्दार्थ: असत्यम संभव नहीं है अन्यतः दूसरी तरफ विविध विश्रम्भ साक्षिण विविध विश्वस्त कार्यों के साक्षी गोदावरी कान उद्देश्या गोदावरी के वन प्रदेश जात निर्विशेषा पुत्र तुल्य पादपाह वृक्ष संवृत हो गया। टीका: राम इति असक्यम असंभवम अंत्यम अंस्त्याह दिशि विविध विश्रम्भ साक्षिण विविधानाम नाना प्रकारणाम विश्रम्भणाम असक्यो विश्वस्तः व्यापरणाम साक्षिण साक्षात् द्रष्टा गोदावरी कान उद्देश्यो गोदावर्याः देवायाः कान उद्देश्याः वनप्रदेशाः जात निर्विशेषो जातेभ्यः अपत्यभ्यः निर्विशेषा तुल्य पादपः वृक्षाः संवृतः संज्ञा। टिप्पणी: दर्शयन्त्याः दृशधातु लिच् प्रत्यय सर्ति ङिप् प्रत्यय तृतीयैकवचनम् विभक्ति कार्यम् जात जन उपसर्ग जन धातु कत प्रत्यय विभक्ति कार्यम् निर्विशेषा निर्गत विशेषः प्रभेदो शेषांतरे निर उपसर्ग विधातु शिष्धातु स्यै प्रत्यय घय प्रत्यय विभक्ति कार्यम् ईदृशो जीवलोकस्य परिवर्त। सीता के कहने का भाव यह है कि जो पदार्थ उसे कभी संयोग की अवस्था में सुख कारक वे ही अब वियोग की अवस्था में दुख कारक बन गए हैं। यही संसार की अवस्था है, यही उसकी नित नित परिवर्तनशीलता है। परे उपसर्ग वृत्त धातु घय प्रत्यय भावे अर्थे विभक्ति कार्यम् श्लोक नंबर 22 पृष्ठ संख्या 232। वासंती: सखे सीते कथम न पश्यामि राम भद्रस्यावस्थाम् नवकुलस्य स्निग्ध अंग अन्न योन उत्सवम् सततम् अपि न स्वच्छादृशो नवो नवयेवसः विकलकर्णः पाण्डुक्षायः सुचाद् परिदुर्बलः कथमपि शैत्यो नयेतव्यम् तथापि दृशो प्रियः। सीता: सखी पश्यामि तमसा पश्यम् प्रियम् भुवः। सीता: हा दैव एष मया विना अहम् अप्येतेन विनेति केन सम्भवित मासित मुहूर्तमात्रम् जन्मान्तरादपि दुर्लभम् लब्धदर्शनम् वाष्पसलील अन्तरेषु पश्यामि तावद् वत्सलम् आर्यपुत्रः इति पश्यन्ति सीता हिंदी वासंती। हे सखी सीता, क्यों नहीं देख रही हो राम भद्र की अवस्था को? नवीन नील कमल के समान मनोहर अंगों से हम लोगों के नेत्रों के आनंद को देते हुए सदा ही हमारे लिए सुलभ दर्शन वे राम नवीन नवीन ही प्रतीत होते थे, किंतु संप्रति शोक के कारण विकल इंद्रियों वाले पीले पड़े हुए अत्यंत दुर्बल यह वही राम है, इसी प्रकार कठिनाई से पहचाने जाते हैं, फिर भी नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। विशेष राम अति सुंदर थे, साथ रहने के कारण जो सर्वदा ही उन्हें देखते रहते थे उन्हें भी वे नित नवीन प्रतीत होते थे। अब राम वियोग की अवस्था में दुर्बल हुए हैं, पीले पड़ गए हैं, फिर भी देखने में सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सीता, हे सखी देख रही हूँ, तमसा देखो प्रियतम को बार बार। सीता, हाय हा देव, यह मेरे बिना और मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगी, ऐसे संभावना किसने की थी? सॉरी सीता, हाय देव, यह मेरे बिना और मैं इनके बिना रह सकूंगी, ऐसी संभावना किसने की थी? अर्थात किसी ने नहीं, तो क्षण भर दूसरे जन्म में भी दुर्बल दुर्लभ दर्शन वाले स्नेहशील आर्य पुत्र को आंसुओं के मध्य में जरा देखती हूँ, यह कहकर देखती हुई खड़ी रहती है। अन्वय, नवकुल स्निग्धैः अंग नयनो उत्सवम ददति सततम अपि नः स्वेच्छादृशः सह नवः नवः एव शुचाविकल्पकर्णः पाण्डुक्षाया परिदुर्बलः इति कथमपि उनेतव्य तथापि दृशो प्रियः नवकुवलयम् शब्दार्थ नवकुल स्निग्धैः नवीन कमल के समान मनोहर अंगैः अंगों से नयनोत्सवम नेत्रों के आनंद को ददत देते हुए सततम निरंतर सदा अपि भी ही न हमारे लिए स्वेच्छा दृश सुलभ दर्शन सह वे नव नवीन नव नवीन एक ही आसित थे, किंतु संप्रति इस समय सुचा शोक के कारण विकल करण विकल इंद्रियों वाले पांडुक्षाय पीली कांति वाले परिदुर्बल अत्यंत दुर्बल सह वही राम है इति इस प्रकार कथमपि किसी किसी प्रकार उन्हें तब्य पहचाने जाने योग्य हैं, पहचाने जाते हैं, तथापि फिर भी दृशो नेत्रों के परिप्रिय प्रतीत हो रहे हैं। टीका, नव कुवल इत्यादि नवानी नवीनानी यानि कुवलायानि नील कमलानि तानि इव स्निग्धानि चिक्कणानि सुन्दराणिति यावत् तैः तादृशैः अंगैः सततम् निरन्तरम् अपि च नः अस्माकम् स्वेच्छादृशः स्वेच्छाया इच्छानुवासित अभूत् तु किन्तु सम्प्रति अधुना सूचा शोकेन विकलकरणः विकलानि क्षीणानि करणानि इन्द्रियाणि यस्य तादृशः पाण्डुक्षायः दुसरकान्तिः परिदुर्बलः अतिकृशः स इति स एव रामो अच्यम अयम इति कथमपि केनापि प्रकारेण उनेतव्यः अनुमेय तथापि तवदवस्था अपि दृशो नेत्रयोः प्रियः मनोहरः अस्तिति शेषः अत्र विभावना लुप्तोपमा चालंकारौ हरणी छंद। टिप्पणी, सखी सीते सीता के प्रति वासंती की यह उक्ति सीता को लक्ष्य करके ही कही गई है, देखकर नहीं, क्योंकि गंगा के वरदान से सीता वासंती के लिए उस समय अदृश्य थी। स्निग्धैः, स्निह धातु कता प्रत्यय भक्ति कार्यम ददत दा धातु सत्य प्रत्यय प्रथम ही कई वचनम भक्ति कार्यम नाभ्यास्ताक्षतु से नुम का अभाव है। स्वेच्छादृश्य मनोविज्ञान का यह सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु को हम बराबर देखते हैं वह हमें सर्वदा सुंदर नहीं प्रतीत होता, किंतु राम का सौंदर्य ऐसा है कि निरंतर देखने वाला भी उससे तृप्त नहीं होता है। उसे यह नित्य नवीन प्रतीत होता है। उन्हें तब्य उत धातु नी धातु तब्य प्रत्यय विभक्ति कार्यम। इस श्लोक में पीत वर्ण आदि सौंदर्य के कारणों में रहने पर भी राम की सुंदरता का वर्णन होने से विभावना अलंकार है। नवकुवलय में ईव का अर्थ लुप्त होने से लुप्तोपमा है। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम हरणी है। छंद का लक्षण नसम रसलाह गह सड़े वैदे हरि हरिणी ही मता है। शब्दार्थ संभावितम संभावना की गई थी। जन्मांतर दूसरे जन्म में दुर्लभ लब्ध दर्शनम कठिनाई से प्राप्य दर्शन वाले वाष्प शरीरांतरेषु आंसुओं के मध्य में वत्सलम कृपालु स्नेहशील। टीका सीतेति सीता इति संभावितम चिंतितम जन्मांतरात अन्य जन्मम जन्मांतरम तस्मात अन्येषु जन्मविश जन्मस्यत्तर्थः दुर्लभम लब्ध दर्शनम दुर्लभम दुष्प्राप्तम यथा स्यात् तथा लब्धम प्राप्तम दर्शनम साक्षात्कारो यस्य तम तादृशम वाष्पसलिलान्तरेषु वाष्पसलिलानाम अश्रुजलानाम अन्तरेषु अवकाशेषु वत्सलम स्नेहम सागरम भरितम। टिप्पणी ये समया बिना सीता राम का परस्पर प्रेम अद्भुत था। दोनों एक प्राण दोप शरीर थे। इनको देखने वाले यही कहते थे कि इनमें कोई भी एक ऐसा दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता है। संभावितम सम उपसर्ग भूधातु ऋच प्रत्यय कथा प्रत्यय भक्ति कार्यम। वाष्प सलिलांतरेषु राम को देखकर सीता की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई थी। वे बड़ी कठिनाई से राम को उस समय देख पाती थी जब पहले वाले आंसू धड़क जाते थे और अभी नए आंसू नहीं निकले रहते थे। वत्सल वत्स धातु लच प्रत्यय वत्सा साभ्याम काम बले विभक्ति कार्यम। श्लोक नंबर 23 पृष्ठ संख्या 234। तमसा ब्रैकेट परिवज्य शास्त्रम ब्रैकेट बंद बिलुलितम अतिपुरैः वाष्पम मान्दशोकम प्रभवम सृजन्ति पक्षलोत्तान दीर्घा स्नप्पयति हृदशेषम स्नेहस्निस्यन्दिनीम् ते धवल मधुरमुग्धा दुग्धकुलैव सृदृष्टिः। हिंदी तमसा आलिंगन करके आंखों में आंसू भरी हुई अत्यधिक प्रवाह के कारण बिखरे हुए अश्रु जल को बहाती हुई सुंदर घनी बरौनियों वाले ऊपर उभरी हुई तथा बड़ी बड़ी स्नेह की वर्षा करने वाली श्वेत मधुर एवं भोली 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 भाली दूध भरी नैया की तरह तुम्हारी आंखें प्राणनाथ को नहला रही है। अन्वय अतिपुरैः विलुलितम आनंद शोक प्रभवम वाष्पम अवसृजन्ति पक्षलोताग्न दीर्घा स्नेह निस्यन्दिनी धवल मधुरम मुग्धा दुग्ध कुल्यात इवते दृष्टि हृदय सनपति संपयति। शब्दार्थ अतिपुरैः अत्यधिक प्रवाह के कारण विलुलितम बिखरे हुए आनंद शोक प्रभवम आनंद और शोक से उत्पन्न वाष्पम अश्रु जल को अवसृजंती बहाती हुई पक्षलोतान दीर्घा सुंदर घनी वरौनियों वाली ऊपर उभरी हुई तथा बड़ी बड़ी स्नेह यांदिनी स्नेह की वर्षा करने वाली धवल मधुर मुग्धा श्वेत मधुर एवं भोली भाली दुग्ध कुल्या इव दूध भरी नैया की तरह दूध की नहर की तरह ते तुम्हारी दृष्टि ही दृष्टि आंखें हृदय सम हृदयस्वर को प्राणनाथ को संपयति स्नान करा रही है। ठीक है बिलुलित इत्यादि अतिपुरैः अतिश्य प्रवायैः बिलुलितम विकीर्णम ज्ञानंद शोक प्रभवम आनंदस्य हर्षस्य शोकस्य मन्युश्चेति आनंद शोकौ हर्षमन्यु प्रभवावौ हेतु यस्य ते तम तादृशम अत्र पत्युरनु लोकनेन हर्षस्तथा तस्य दयननी दयनीयाया दशाया अवलोकनेन शोको बोध्य श्रापम वाष्पम अश्रु अवसृजन्ति पातयन्ति उत्पादयन्ति पक्षम लोतान दीर्घा पक्षला प्रशस्ताक्षीलोमयुक्ता स च साउतानां स च विस्फारिता निस्यन्दः च सा दीर्घा च आयता च विशेषणां समासः स्नेह निस्यन्दिनीं स्नेहस्य अनुरागस्य धवला प्रोषितं भर्तृकाणां शरीरस्य संस्कारस्य निषेधेन कजलाभावात् शुक्ला मधुरा सौन्दर्यर्पिता मुग्धा मनोहरा दुग्धकुल्या दुग्धस्य पयसः कुल्याः द्रोणी इव यथा दुग्धं भारिता द्रोणीव कुल्याल्पा कृत्रिम सरिता इत्यमरनुसृत्य पयसः कृत्रिम मनः दीव इति व्याख्यान तु साम्यं भावा उपेक्षते तव सीताया इत्यर्थ दृष्टिः नेत्रं हृदयशेषं प्राणबल्लभं रामं इति यावत् सनपयति सिंचति अत्र उपमा उत्प्रेक्षालंकारौ मालिनी छन्दः टिप्पणी परिस्वज्य परिउपसर्ग स्वज्य धातु लेप प्रत्यय विलूलितम् विउपसर्ग लुल धातु कुत प्रत्यय भक्ति कार्यम् आनंद शोक प्रभवम् विरह में जलती हुई सीता प्राण वल्लभ राम के दर्शन से आनंदित तथा विरह व्यथा के कारण शोक संतप्त थी, अतः उनके आंसू हर्ष और शोक के कारण निकल रहे थे। प्रभवम प्रभवती अस्मात् प्रउपसर्ग भूधातु ऋषिदोरम अपउपसर्ग विभक्ति कार्यम अवसृजंतो अवउपसर्ग सृज धातु सत्रि प्रत्यय ज्ञ प्रत्यय भक्ति कार्यम निस्यन्दिनी निउपसर्ग स्यन्द धातु णिच प्रत्यय णिनी प्रत्यय अथवा स्नेह निस्यन्द अस्याः अस्तिति स्नेह निस्यन्दः इनी प्लस घी प्लस विभक्ति कार्यम दुग्ध कुल्या पुरुषों की आंखें रक्ता तथा स्त्रियों की धवल प्रशस्त मानी गई है। पति संजिता स्त्रियां सर्वदा आंखों में कजल लगाती है, अतः उनकी आंखें काली कजरारी वर्णित होती है, किंतु धर्मशास्त्र के आदेशानुसार विरहिणी सीता ने आंखों में काजल लगाना छोड़ दिया था, अतः उनकी आंखें धवल हैं। यहाँ कुल्या का अर्थ नहर कृत्रिम सरित न होकर नैया है। सीता की धवल आंखें दूध से भरी नैया की भांति प्रतीत हो रही है। आंखें और नैया की बनावट एक जैसी होती है, दोनों किनारे पर पतली और बीच में चौड़ी होती है, यही आंखों का सौंदर्य भी है। इस श्लोक में ईव के द्वारा उपमा अलंकार है। संपायति में उत्प्रेक्षा सूचक ईव के लुप्त होने से प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है। श्लोक में प्रयुक्त हरिणी छंद का लक्षण नसमरज सलाह गह सड़वेदैह हरिणी मता श्लोक नंबर 24 पृष्ठ संख्या 236 वासंती ददतुतरव पुष्पे अर्घ्य फलश्च मधुस्युतः स्फुटित कमला मोद प्राया प्रवान्तो वनानिला कलम्बी वरलम दज्यत कंठा कणवन्तु शकुन्तयः पुनरिमिदं देवो रामः स्वयं वनमागतः। राम एहि सखी वासंती नन्वितः स्थायितं स्थीयतां वासंती उपविश्य शास्त्रम महाराज अपि कुशलम कुमार लक्षणस्य। हिंदी वासंती मकरंद वर्षाने वाले वृक्ष फूलों के और फलों से अर्घ पूजोपहार प्रदान करें भी विकसित कमलों की सुगंध से भरपूर वन का हवाएं बहें सुरीले कंठ वाले पक्षी निरंतर मधुर ध्वनि से कुंजे क्योंकि यह भगवान राम स्वयं पुनः इस वन में आए हैं। राम आओ सखी वासंती इधर बैठो। वासंती बैठकर आंखों में आंसू भरकर महाराज कुमार लक्ष्मण सकुशल तो हैं। अन्वय मधुस्च्युतः तरवः पुष्पैहन फलैः अर्घ्यं ददतु स्फुटित कमला मोद प्रायाः वनानिलाः प्रवान्तु रज्यत्कण्ठाः शकुन्तयः अविरलं कलं कणन्तु यतः अयं देवः रामः स्वयं पुनः इदं वनम आगतः। शब्दार्थ मधुस्तुत मकरंद बरसाने वाले तरवह वृक्ष पुष्पैह फूलों से च और फलैह फलों से अर्घ्यम अर्घ्य ददतु ते स्फुटित कमलमोद प्रायः विकसित कमलों की सुगंध से भरपूर बना लीला वन की हवाएं प्रवांतु बहे रजत कंठा सुरीले कंठ वाले शकुंतलः पक्षी अविरलम निरंतरम कमल मधुर ध्वनि से कणवंतु कुंजे हुए अयम यह देव देवराम और स्वयं खुद बिना किसी भी प्रेरणा के पुनः फिर इदम इस वनम में वन में आगतः आए हैं। टीका ददतु तरव इव मधुच्युतः मधुनि मकरंदान मकरंदान पुष्पर सन्नीत्यर्थ सिच्यो तंति चिरंतिति मधुच्युतः पुष्पर श्रविणः तरवः वृक्षाः पुष्पैः प्रसुनैः तथा फलैश्च अर्घ्यं पूजोपहार ददतु प्रयक्षन्तु स्फुटित कमलान् मोद प्रदाय स्फुटितानि विकसितानि यानि कमलानि पद्मानि तेषामादो सौरभः प्रायः बहुलो येषु उक्तः तादृशाः वनानिलाः वनवाताः प्रवान्तु प्रभान्तु रज्जत्कण्ठाः रजन्ताः रागयुक्ताः कण्ठाः गलायेषताम् तादृशः शकुन्तयः पक्षिण अविरलम् निरन्तरम् कमलम् मधुरम् तथा यथा स्यात् तथा कणवन्तु पूजन्तु यत् इति शेषः अयम् एषः अङ्गुल्या निदृष्टो अयम् इति भावः देवः भगवान् रामचन्द्रः स्वयम् आत्मन्येव पुनः भूयः इदम् एतत् वनम् अरण्यम् आगतः आयात अस्तिति क्रियास्य सह अनादिदेवात्वात् वात्सल्या एतकथनम् युक्तियुक्तम् एव यथा कश्चिज्जनो गुहागतायाः अतिथये पूजोपकरणानि व्यहजवातम् कलमधुर शब्दाश्चार्य यति तथैव वनधिदेव वनधिदेवी वासन्त्यपि वर्तितुम् प्रेरयति काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः हरिणिछन्दः। टिप्पणी अर्घ्यम् अर्धाय अर्घाय इतम् अर्घ्यम् अर्घ यत विभक्तिकार्यम् मधुस्युतः मधु उपपद स्युच धातु विपप्रत्यय प्रथमा बहुवचने विभक्तिकार्यम् यह धातु यकार रहित भी है अतः मधुस्युत यह रूप भी बनता है। रज्जत कंठा रत्युत्कंठा यह पाठ भी मिलता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी रत्या राम विषय प्रेम भरा उत्कंठा उन्नत ग्रीवा किंतु निष्क्लिष्ट कल्पना के कारण यह पाठ लोकप्रियता न अर्जित कर सका। कणवंतु कोणंतु कोणंतु गिदवाद्य भेदेन शब्द कुर्वंतु अत एव कुजंत्विति नोक्तम् इति वीर राघव स्वयं पहली बार पिता की प्रेरणा से राम वन आए थे किंतु इस बार अपनी इच्छा से वन में आए हैं यह भाव है। इस श्लोक के भाव में भाव के लिए रघुवंश दो अध्याय अठारह आठवां श्लोक तेरह से तुलना करें। चतुर्थ चरण में वर्णित राम का आगमन प्रथम तीन चरणों के कार्यों के प्रति कारण है अतः काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक में प्रयुक्त छंद का नाम है हरणी। इसके लक्षण के लिए पीछे के श्लोक नंबर 23 की टिप्पणी देखें।
श्लोक नंबर 25 पृष्ठ संख्या 238 राम ब्रैकेट अनाकरणनम अभिनियम ब्रैकेट बंद कर कमल वितीर्णे अम्बुनिवार वष्पम मस्तरु शकुनिम करुगंगान मैथिली यान पुष्यत भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रसवोद्भेदयोग्यः वासन्ति। महाराज ननु प्रेक्षामि कुशलम् कुमार लक्ष्मणस्येति राम आगत आत्मगतम् अये महाराज इति निष्प्रणयम् मन्त्रणम् पदम् सौमित्र मंत्र मात्र के वाष्पस्खलिताक्षर कुशल प्रश्न तथा मन्ने विदित सीता वृतांतन्ये यम इति ब्रगड प्रकाशम ब्रगडबन आह कुशलम कुमार लक्षणस्य वासंती रोदति अयि देव किम परम दारुणम खल्वसी सीता सखी वासंती किम त्वमेवादिनीं भवसि पूजारह सर्वस्यां पुत्रः विशेषतो मम विशेषंख्या सही वासंती किम हिंदी राम न सुनने का अभिनय करके जानकी ने अपने कर कमलों से बांटे गए जल तिन्नी धान और कोमल घासों से जिन वृक्ष पक्षी और मृगों को पाला पोसा था उनके दिखलाई पड़ने पर प्रवाह की उत्पत्ति में से समर्थ मेरे हृदय का द्रव की भांति कोई अविर्वचनीय विकार उत्पन्न हो रहा है। विशेष अपनी प्रियतमा की प्रिय वस्तुओं को उसके द्वारा पाले गए पक्षियों एवं पशुओं को देखकर चीर वियोग के पल में पल रहे व्यक्ति के हृदय की जो दशा होती है उसका वर्णन संभव नहीं। उस अवस्था में व्यक्ति के हृदय में जो अविर्वचनीय भाव विकार उत्पन्न होता है वह आंसू के झरने के रूप में प्रकट फूट पड़ने के लिए आतुर हो उठता है। ऐसी ही कुछ दशा भगवान राम के सदृश की हो रही है। वासंती महाराज मैं पूछ रही हूँ कि कुमार लक्ष्मण का कुशल तो है। राम अपने आप अरे महाराज यह संबोधन का पद स्नेह से शून्य है क्योंकि केवल लक्ष्मण के विषय में आंसू के कारण अस्पष्ट अक्षरों वाला कुशल प्रश्न है। इससे मैं समझता हूँ कि सीता का समाचार इसे विदित है प्रकट रूप से। हाँ राजकुमार लक्ष्मण का कुशल है। वासंती रोती हुई हे महाराज आप केवल अति कठोर क्यों हो रहे हैं। सीता सखी वासंती तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो। आर्य पुत्र सभी के पूजनीय हैं, विशेष रूप से मेरी सखी वासंती के। अन्वय मैथिली कर कमल वितीर्णे अम्बु निवार पै यान तरुशकुनी कुरंगान अपुष्यत तेषु दृष्टेषु प्रसवोद्भद भेद योग्य मम हृदयस्य द्रव इव कोऽपि विकारः भवति। शब्दार्थ मैथिली जानकी ने कर कमल वितीर्ण अपने कर कमलों से बांटे गए अम्बु निवार वाष्पै जल तिन्नी धान तथा कोमल घासों से यान जिन तरु शकुनी कुरकान वृक्ष पक्षी और मृगों को अपुष्यन पाला पोसा था तेसु उनके दृष्टेसु दिखलाई पड़ने पर प्रसवोद्भेद योग्य स्रोत या झरने की उत्पत्ति में समर्थ मम मेरे हृदय अस्य हृदय का द्रव द्रव की तरलता की इव भांति को अपि कोई अनिर्वचनीय अवर्णनीय विकार विकार विकति भवति उत्पन्न हो रही है। टीका कर कमल इत्यादि मैथिली जानकी कर कमल वितीर्ण करौ हस्तौ कमले पंकजे श्वेति कर कमले ताभ्याम वितीर्णानि दतानि तैह अम्बु निवारस्पै अम्बु जलम निवारम मुनि धान्य विशेष सस्सम वालतृणम तैह यान तरुशकुनी कुरंगान वृक्ष हरिणानि अपुष्यत अवर्धत अत्रांबुना तरुण अम्बुधिरवाराभ्याम शकुनिव अम्बुधिरवाष्पैः कुरंगान इति विवेकः तेषु पूर्वोक्तेषु वृक्षादिषु दृष्टेषु अवलोकितेषु सत्सत्सु प्रस्तवोद्भेदयोग्यः प्रस्तवस्य स्त्रोतः उद्भेद उद्गमे योग्यः समर्थः प्रस्तवोद्भेदाय इति पाठ तु प्रस्तस्य पाषाणस्य उद्भेदे विदारणे योग्यः समर्थः
मम मे रामस्यैत्यर्थः हृदयस्य चेतसः द्रव इव आदत्येव कोऽपि अनिर्वचनीय इत्यर्थः विकारः विकृति भवति उत्पद्यते अत्र यथार्थ यथाशङ्क्षम उपमालङ्कारौ मालिनी छन्दः टिप्पणे वितीर्णे व्युपसर्ग त्रिधातु तप्रत्यय विभक्ति कार्यम बहुवचने तृतीयक वचने तृतीयक बहुवचने विभक्ति कार्यम अम्बु निवार सस्पै जल से वृक्षों को जल और निवार से पक्षियों को तथा जल निवार एवं कोमल घासों से मृगों को पालती पोषती थी सीता मैथिली मिथिलायाम राजा के मैथिलस्तस्यास्पत्यम स्त्री मैथिली मैथिल प्लस ईण प्लस ंगिस प्लस विभक्ति कार्यम विकार वि उपसर्ग क्री धातु घ्वय प्रत्यय विभक्ति कार्यम प्रस्तवोद्भेद्योग्य मैंने मूल में यह पाठ प्रसिद्ध व्याख्याकार वीर राघव का अनुसरण करते हुए दिया है किंतु इस पाठ की अपेक्षा प्रस्तवोद्भेद्योग्य यह पाठ अधिक समीचीन तथा तर्क संगत प्रतीत होता है। सीता का कर्क के कर कमलों से बढ़ाई हुई गई वस्तुओं का तथा पाले गए पशुओं को देखकर चीर विरही राम के हृदय में जो अनिर्वचनीय विकार उक्षीण होकर कसमसा रहा है उसे देखकर पत्थर भी पसीज जाएगा, विदृढ़ होकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस विकार का वेग इतना तीखा है कि इसमें इसके सामने आने वाले पत्थर भी फट जाएगा। वस्तुतः यही है भवभूति के करुण रस की विशेषता अलौकिकता। इसी बात का समर्थन प्रथम अंक के 28वें श्लोक में भी होता है। अपिग्रावारोदित्यादपि दलति व्रजस्य वज्रस्य हृदयम्। इसकी अपेक्षा प्रस्तवोद्भेद्योग्य यह पाठ क्लिष्ट कल्पनीय है भी है। शब्दार्थ निष्प्रणयम् स्नेह से शून्य प्रेम से रहित। आमंत्रणदम् संबोधन का पद। सौमित्र मात्रम् केवल लक्षण लक्ष्मण के विषय में वाष्पस खलिताक्षर यासु के कारण अस्पष्ट अक्षरों वाला विदित सीता वृतांता सीता का समाचार इसे विक्षित है विदित है। दारुण अति कठोर एवं वादिनी इस प्रकार कहने वाली पुजार आदरणीय पूजनीय ठीक है। वासंतीति निष्प्रणयम् निर्गतः दुरीभूतः प्रणयः स्नेहो स्मात् तत् स्नेह विरह रहितम् इत्यर्थः। आमन्त्रद पदम् आमन्त्रणस्य संबोधनस्य पदम् शब्दः संबोधन शब्दः इत्यर्थः। सौमित्रमात्रके सुमित्राया अपत्यम् सौमित्रिः सौमित्रेरेव सौमित्रित् मात्रकम् तस्मिन् केवले लक्षणम् इत्यर्थः। वाष्पस्खलिताक्षर वाष्पेण अश्रुणा स्खलितानि अयस्पष्टानि अक्षराणि वर्णाः यस्मिन् सः विदितसीताः वृतान्ताः विदितः ज्ञातः सीताः ज्ञानस्याः वृतान्तः निर्वासनरूपः समाचारो यया सा तादृशी दारुणः अतिकठोरः एवं वादिनि आर्यपुत्रम् प्रतिकठोरम् भाषण पूजारः पूजायाः आराधनायाः अर्ह योग्यः। टिप्पणी महाराज इति निष्प्रणयम् प्रथम बार जब श्री राम सीता के साथ वन में आए थे उस समय वासंती सीता की प्रिय सखी होने के कारण राम को सखा कहती थी राम भद्र कहती थी। ये सभी शब्द स्नेह से भरपूर थे किंतु राम ने निरपराध गर्भिणी सीता को व्याघ की भांति निष्ठुर होकर घोर जंगल में निर्वासित कर दिया था। यह बात वासंती को विदित थी अतः वह स्नेह शून्य महाराज इस संबोधन पद से उन्हें अभिहित कर रही है। हृदय के भाव शब्दों से प्रकट होते हैं अतः वासंती की स्नेह शून्यता राम को विदित हो जाती है इसलिए वे कहते हैं निष्प्रणयम् मम मात्रणम् पदम् विदित सीता वृतांता। राम बासंती के स्नेह शून्य शब्दों से यह अनुमान कर रहे हैं कि सीता के वन में निर्वासन की बात बासंती को विदित हो गई है। एव वादिनी एवं वादितुं शीलमस्या वद धातु निप्रत्यय विभक्ति आदि।
श्लोक नंबर 26 पृष्ठ संख्या 242। वासंती त्वं जीवितं स्वमसी मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदीं नयनयोरमृतं त्वं मयंगे इत्यादि प्रिय सत्तैरं मरुद्यः मुग्धां तामेव शान्तं अथवा किमतः परेण इति मुह्यति। तमसा स्थाने वाक्य निवृतिं महोषश्च मोहश्च। राम सखी समाश्वसी समाश्वसी। वसंती समाश्वस्य तत्किं किमिदं कार्यम अनुष्ठितं देवेन। सीता सखी वासंती विरम विरम। राम लोको नमृष्यति। वासंती कस्य हेतुः। राम स एव जानाति किमपि। तमसा चिरादौ पालंभ। वासंती तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरी आँखों की चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो इत्यादि प्रिय वचनों से भोली भाली सीता को बहला कर उसको ही अथवा बस में करने बस इसके आगे कहने से क्या लाभ। विशेष दूसरी वासंती का पूरा वक्तव्य इस प्रकार है। सीता जिस सीता को सैकड़ों चाटू वचनों से आप बहलाते थे बहकाते थे उसी को दारुण बहेलिए की भांति निर्दय होकर मरने के लिए घोर जंगल में छोड़ दिया। उस समय सीता कठोर गर्भा में भी थी। अब इस प्रकार आप क्या आपको दया नहीं आई। यह कहकर वह मूर्छित हो जाती है। तमसा इति उचित अवसर पर वाक्य को की यह समाप्ति और मूर्छा का आना हुआ है। राम सखी आश्वस्त हूँ आश्वस्त हूँ। बासंती आश्वस्त होकर तो क्यों यह अनुचित कार्य किया गया महाराज के द्वारा। सीता सखी वासंती वश करो वश करो। राम लोग सीता का घर में रहना सहन नहीं करते हैं। वासंती किस लिए। राम वे ही जानते हैं कुछ भी कारण। तमसा बहुत समय के बाद संसार को यह उलाहना दिया गया है। वासंती त्वम मे जीवितम असी त्वम मे द्वितीयम हृदयम असी त्वम मे नयनयो कौमुदी असी त्वम मे हृदय अंगमे अमृतम असी इत्यादि भी प्रिय सतैः मुग्धामनुरुध्यताम् एव अथवा शांतम अत परेण कथनेन किमम् किम। शब्दार्थ त्वम तुम मे मेरा जीवितम जीवन असी हो त्वम तुम मे मेरी नयनयोह ने आँखों की कौमुदी चांदनी असी हो त्वम तुम मे मेरे अंगे अंगों के लिए अमृतम अमृत असी हो इत्यादि भी इत्यादि प्रिय सतैः सैकड़ों प्रिय वचनों से मुग्धाम भोली भाली सीता को अनुरध्य बहलाकर सैकड़ों बहलाकर ताम उसको ये वही अथवा शांतम बस अतः इसके परेण बाद उसको के कथनेन कहने से किम क्या लाभ। ठीक है त्वम जीवितम इति त्वम सीता मे मम जीवितम जीवनम असि भवसी अस्तिति सर्वत्र क्वाक्यम मासौ योजनीयम त्वम मे मम राज्यस्य द्वितीयम अपरम हृदयम चेत असि त्वम मे नयनयोः नेत्रयोः कौमुदी चंद्रिकायसि को पृथिव्याम मुदन्ते जनाः यस्मात् तेनेयम् कौमुदी मता इति कौमुदी रुक्ति यन्रुक्ति त्वम मे अंगे कांडं द्यादवे अमृतम पिवसी असी इत्यादि भी एवं प्रकार प्रिय सतैः प्रियाणाम प्रिय वचनानाम सतैः अनंत शक्यामि शतम सहस्त्रम मुक्तम सर्वम मुग्धाइव लक्षण लक्षिता सुंदरीम अति सरला वानुरध्य अनुनियम तामेव पूर्वोक्ता अनुनयम विषयम भूतामयेव कथम त्यक्तम वानशी नाशितम वानशिति वा अत्र त्वयि करुणा नोद्गता किम् इति विशेषः अथवा अहोस्विति शान्तम् अलम् त्वाम् उपलभ्यति शेषः अतः अस्मात् परेण अन्तरेण कथनेन किम् को लाभः
न किमपिति भावः अत्र रूपकम् अतिशयोक्ति आक्षेपाश्चालङ्कारः वसन्तीलका छन्दः। टिप्पणी: जीवितम् जीव नपुंसके भावे कत प्लस विभक्ति कार्यम्। अनुरुद्ध अनु उपसर्ग रुद्ध धातु ल्यप प्रत्यय मुग्धा मुह धातु कत प्रत्यय टाप प्रत्यय विभक्ति कार्यम्। शांतम वसंती राम के द्वारा सीता के निर्वासन की बात को कहने में असमर्थ है, सीता का निर्वासन उसे अरुह्य है, अतः वह वाक्य को पूरा किए बिना मध्य में ही रुक जाती है। अंतः परेण राम को यह उपालंब सीता के द्वारा न दिलाकर वासंती के द्वारा कवि ने दिलवाया है, यह उसके नाटक रचना कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, चरित्र चित्रण का एक अद्भुत उपस्थापन है। यह श्लोक तथा इसके उदाहरण है, यह श्लोक तथा इसके आगे के कुछ श्लोक वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं। वैदर्भी लंबे लंबे समासों से शून्य हुआ करती है, कोमल भावों की व्यंजना के लिए भावभूति ने इसी वैदर्भी रीति का अवलंबन किया है। शब्दार्थ: स्थाने उचित अवसर पर वाक्य निवृत्ति, वाक्य की समाप्ति, मोह मूर्छा, अकार्यम अनुचित कार्य अनुतिष्ठति किया गया है। टीका: तमसा इति स्थाने उचित अवसरे वाक्य निवृते वाक्यस्य वचनस्य निवृत्ति निरोधः मोह मूर्छा च अकार्यम अनुचितम कर्मम सीता निर्वासन रूपम अनुचितम कर्म इति भावः अनुतिष्ठतम अनुचरितम भवता। टिप्पणी: स्थाने वासंती सीता की अति प्रिय सखी है, सखी थी, सीता उसे प्राणाधिक प्रिया थी, सीता के निर्वासन के प्रसंग में उपस्थित होने पर भी वह मूर्छित हो जाती है, यदि सीता के निर्वासन की पूरी पूरी बात यह कह डालती तो निश्चय ही उसका हृदय फट जाता और वह मर जाती, अतः उसका मूर्छित होना और फलस्वरूप वाक्य का बंद होना उचित अवसर पर ही हुआ है, यही स्थाने शब्द का भाव है। निवृत्ति: निउपसर्ग वृत्त धातु कृतिन प्रत्यय विभक्ति कार्यम मोह, मोह धातु भय प्रत्यय विभक्ति कार्यम अनुष्ठितम, अनुपसर्ग स्था धातु कथ प्रत्यय विभक्ति कार्यम कस्य हेतु षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द के प्रयोग में कस्य में षष्ठी विभक्ति आई है। उपालंब उप उपसर्ग आधातु लब धातु घय प्रत्यय नुम विभक्ति कार्यम। श्लोक नंबर 27 पृष्ठ संख्या 244। वासंती: अई कठोर यशकीलते प्रियम किमयसो ननु धोर घोरमतः परम किम भवम वद विपिने हरिणे दृशः कथम नाथ कथम मतमन्यसे सीता सखी वासंती त्वम एव दारुणा कठोराच अयव प्रलपन्तम प्रलापयसि तमसा प्रणय एव विवाह व्याहरति शोकश्च। वासंती: हे निष्ठुर तुम्हें निश्चय ही यश प्रिय है, किंतु इससे अधिक घोर अपयश क्या होगा कि अपने कठोर गर्भा सीता का निर्वासन कर दिया, मृगनयनी सीता का जंगल में क्या हुआ, हे नाथ बतलाइए इस विषय में आप क्या मानते हैं, अर्थात आप क्या सोचते हैं। सीता: सखी वासंती तुम ही निष्ठुर और निकठोर हो जो इस प्रकार विलाप करते हुए आर्य पुत्र को भी और रुला रही हो। तमसा: प्रेम और शोक ऐसा कर रहा है, अर्थात कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। राम: सखी किमत्र मंतव्यम। राम: हिंदी: सखी इसमें विचार करना क्या है। अन्वय: अई कठोरते कील यशः प्रियम् अस्ति ननु अतः परम् घोरम् अयसः किम् हरिणीदृशम् विपिने किम् अभवतः नाथ कथय वत अत्र कथम् मन्यसे। शब्दार्थ: अई हे कठोर निष्ठुर ते तुम्हें कील निश्चय ही यशः यश प्रियम् प्रिये अस्ति है ननु निश्चय ही अतः इससे परम अधिक घोरम घोर भयंकर अयसह अपयस किम क्या होगा। हरणी दृश्य मृगनयनी सीता का विपिने जंगल में किम क्या अभवत हुआ। नाथ स्वामी मालिक कथय बतलाइए वत यह खेद का सूचक अव्यय पद है। अत्र इस विषय में कथम क्या मन से आप सोचते हैं क्या मानते हैं। टीका अई कठोर इति अई कठोर हे निष्ठुर ते तव रामस्य इत्यर्थः कील इति प्रसिद्धौ यस्यः कृति प्रियम अभिष्टम अस्तिति क्रियाशेषः नन्वित्यादपेक्षे क्षेपे अव्ययम् यत अतः अस्मात् अकारण सीता परित्याग जनितम् यदस यसः तस्माद् इत्यर्थः परम अधिकम् घोरम् भयंकरम् अयसः अकृतिकरम् किम् किमस्ति न किमपि इति भावः तदेव प्रतिपादयति हरिणीदृशः। हरिण्याः मृग्याः दृशा इव दिशौ नेत्रे यस्याः सा हरिणादिकः हरिणीदिकः तस्याः विपिने अरण्ये किमभवत् किम् वृतम् हे नाथ हे प्रभो कथयम् ब्रूहि वतेति खेदे अत्र अस्मिन् विषये कथम् किम् प्रकारम् मन्यसे उत्प्रेक्षसे अत्र विषम उपमा चालंकारौ द्रुत विलंबितम् छन्दः। टिप्पणी कठोर वासंती राम को कठोर कह रही है क्योंकि राम ने सीता का निर्वासन उस समय किया था जब उनके प्रभाव होने के कुछ ही दिन शेष थे। यह श्लोक की वैदर्भी रीति का सुंदरतम निदर्शन है। इस श्लोक में विषम और उपमा अलंकार तथा द्रुत विलंबित छंद है। छंद का लक्षण द्रुत विलंबितम माह नभौ हरौ शब्दार्थ दारुणा निष्ठुर कठोरा कठोर प्रलंपंतम विलाप करते हुए को प्रलापयसी रुला रही हो प्रणय प्रेम एवं इस प्रकार व्याहरति कह रहा है। अत्र इस विषय में सीता मर गई या जीवित है इस विषय में मंतव्य मनना है विचार करना है। टीका सीता इति दारुणा शुष्काष्ठ तन्नी रसा कठोरः प्रशस्तर इव कठिना प्रलपन्तम् विलंपन्तम् प्रलापयसि विलपितुम् प्रेरयसि प्रणय सीता विषयिणी प्रीतिः शोकः दुःखावेगश्च अत्र अस्मिन् विषय सीता विषय इत्यर्थः। सीता मृता जीवित वेतयत्र विषये मन्तव्यम् विचारणीयम् संभावनीयम् वा। टिप्पणी अत्र मन्तव्यम् वासंती ने राम से पूछा था किम अभवत् विपिने हरिवृषः कथयनाथम कथम वत मन्यसे। इसके उत्तर में राम का कहना है कि इससे मानना क्या है, निश्चय ही सीता को जंगली जानवर नोच नोच कर खा गए होंगे। इसी भाव को आगे के श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। श्लोक नंबर 28 पृष्ठ संख्या 246 त्रस्तै कहायम् अनुरंग विलोक दृशे विलोल दृष्टे तस्याह परिस्फुटी फुरित गर्भ गर्भलाशया ज्योत्सनामयी मृदुल बालम मृणाल कल्पा कव्याद्भिर लतीका नियतः विलुप्ता। सीता आर्य पुत्र घ्निये एषाम् घ्निये। राम हा प्रियजान की क्वासी। सीता हाधिक हाधिक अन्य इव आर्य पुत्रः प्रयुक्त कंठः प्ररुदीव भवति तमसा वत्से संप्रति एकम् वर्तत कर्तव्यानि खलु दुखितम् दृश दुखम् निर्धारणानि। अन्वय नहीं हिंदी। भय भीत एक वर्ष के मृग की भांति चंचल आंखों वाली इधर उधर हिलते डुलते हुए गर्भ के भार से अलसाई हुई उस सीता की कोमल एवं नवीन मृणाल के तुल्य चंद्रमा की किरणों से बनी हुई सी अंग तालिका हिषक जंतुओं के द्वारा निश्चय ही नोच नोच कर समाप्त कर दी गई होंगी। सीता, आर्य पुत्र, यह मैं प्राणों को धारण कर रही हूँ, प्राणों को धारण कर रही हूँ। राम, हाय प्रिय सीता, तुम कहाँ हो? सीता, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। आर्य पुत्र, साधारण आदमी की तरह गला फाड़ कर विलाप कर रहे हैं। तमसा, बेटी उचित ही है, यह दुखी व्यक्तियों को अपने दुख की आग बुझानी ही चाहिए। अन्वय, त्रस्तई कहाय अनुकरंग विलोलक दृष्टे परिस्फुरित गर्भ भरालास आलसया तस्याह मृदु बाल मृणाल कल्पा ज्योत्सनामयी इव अंग लतिका क्रव्याद्भिव नियतम विलुप्ता। शब्दार्थ, त्रस्तई कहाय अनुकरंग विलोल दृष्टे, भयभीत एक वर्ष के मृग की भांति चंचल आंखों वाली परिस्फुरित गर्भ रालयास इधर उधर हिलते डुलते हुए गर्भ के भार से अलसाई हुई तस्याह उस सीता की मृदुल बाल मृडाल कल्पा कोमल एवं नवीन मृडा के तुल्य ज्योत्सनामयी चंद्रमा की किरणों से बनी हुई सी अंग लतिका लता की तरह देह कव्याद भी हिंसक जंतुओं के द्वारा नियतम अवश्य ही विलुप्ता नोच नोच कर समाप्त कर दी गई होगी। टीका, त्रस्तई कहायन इत्यादि त्रस्तई कहायन कुरंग विलोल दृष्टे त्रस्तः भीतः एवं हायनम वर्षः यस्य स एक हायनः एक वर्षय वयस्कः यः कुरंगः हरिणः तस्य एव विलोला अतिचञ्चलाः दृष्टिः नेत्रः यस्याः सा तदाभूतायाः परिस्फुरित गर्भभरालयाः परितः उदरे सर्वतः स्फुरितः स्पन्दमानं यो गर्भ गर्भस्थ शिशुः तस्य भरेण भारेण हेतुना अलसायाः मन्थरायाः तस्याः सीतायाः इत्यर्थ। मृदु बाल मृडाल कल्पा मृदु सुकोमलं यत बाल मृडालं नवोद्गतो विषण्डस्तम अधिधुता इषदं समाप्तौ प्रत्यय नूतन मृडाल समद मृदुलैत्यर्थ। ज्योत्सनामयि कौमुदी घटित इव ज्योत्सनाभाव लावण्यम इत्यर्थ। अंगतालिक अंगलतिका अंगलतिकेवा अंगलतिका हृदेहलता काव्याद्भिः हृदयस्थृष्णजी हिन्नजीवैः नियतम् निश्चितम् विलुप्ताः लोपम् प्रापिता भक्षेत्यर्थः। अत्र लुप्तोपमा उत्प्रेक्षालङ्कारौ वसन्ततिलका छन्दः। टिप्पणी, काव्याद्भिः हिंसक जन्तुओं के द्वारा क्रव्य कच्चा मांस अद खाने वाले क्रव्यम् अदन्ति इति कव्यादास्ते त्रव्याद क्रव्य प्लस उद्पद प्लस विट प्लस क्रव्यच्छ से विट प्रत्यय विभक्ति कार्यम विलुप्ता विउपसर्ग लुप धातु तथा टाप प्रत्यय विभक्ति कार्यम। इस श्लोक में तीन लुप्तोपमाए हैं। कुरंग विलोल में ईव अर्थ है, मृडाल कल्पा में ईव अर्थ है तथा अंगलत्तिका में ईव अर्थ है। ज्योत्सनास्मीव में इव उत्प्रेक्षा सूचक है। यहाँ वसंत तिल का छंद है। छंद का लक्षण उगता वसंत तिल का तबजा जगउगा। शब्दार्थ, धीय प्राण धारण कर रही हूँ, जीवित हूँ। क्वाशी, कहाँ हो? अन्य इव दूसरे व्यक्ति की भांति साधारण आदमी की तरह प्रमुक्त कंठम पुक्ता पुक्का फाकर संप्रतिकम उचित वर्तमान काल के युग्य दुख निर्वाणानी दुख की आग का बुझाना दुख शांत करना। टीका, सीता इति दिघ्निये प्राणान धारयति क्व कुत्र असि वर्तते अन्य इव अपह अपरह साधारणो जन इव प्रमुक्त कंठम प्रमुक्त कंठ लक्षणाया कंठस्वरो यस्मिन् कर्मणि तत यथा स्यात् तथा अत्युच्चै स्वरम् इत्यर्थः। क्रियाविशेषणमेतत् सम्प्रतिकम् युक्तम् समीचीनम् दुःखनिर्वाणानि निर्वापणानि दुःखस्य कष्टस्य निर्वापणानि प्रसन्नमानि कर्तव्यानि विधात तत्तव्यानि। टिप्पणी: दुःखितैः दुःख प्लस इतश्च विभक्ति कार्यम्। निर्वाण निर्वापणानि निरुपसर्ग वाधातु ऋच प्रत्यय पुकागम ल्युट प्रत्यय विभक्ति कार्यम्। व्यक्ति जब दुख के भार से दब जाता है उस समय यथेक्ष रोने से किसी से दुख की चर्चा करने से उस व्यक्ति का दुख कम हो जाता है, उसे कुछ राहत मिल जाती है। यही कारण है कि तमसा राम के रुदन को औचित्य पूर्ण ठहरा रही है।
श्लोक नंबर 29 पृष्ठ संख्या 248। पूरोत्पिणे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोमे च हृदयम् पलापरेव धार्यते। विशेषतो रामभद्रस्य बहु प्रकार कष्टो जीवलोकः। हिंदी: तालाब में जल प्रवाह का आधिक्य होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका प्रतिकार है। शोक के कारण क्षोभ होने पर भी हृदय प्रलाप द्वारा ही धारण किया जाता है। विशेषकर रामभद्र के लिए संसार में अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त है। अन्वय: तटाकस्य पूर्वोत्पिंड परिवाह प्रतिक्रिया अस्ति शोक क्षोभे च हृदयम् प्रलापै एवं धार्यते। शब्दार्थ: तटाकस्य तालाब में पूर्वोत्पिंडे जल प्रवाह का आधिक्य होने पर परिवाह जल को बाहर निकालना ये वही प्रतिक्रिया प्रतिकार अस्ति है। शोक क्षोभे शोक के कारण क्षोभ होने पर च भी हृदयम् हृदय प्रलापै प्रलापों के द्वारा एव ही धार्यते धारण किया जाता है। टीका: पूर्वोत्पिंड इति तटाकस्य सरोवरस्य पूर्वोत्पिंडे पुरस्य जलम् प्रवाहस्य पूर्वोत्पिंडे आधिके स्रोतो भूत्स्यत्व इत्यर्थ। प्रवाहः जलानिसारणमेव प्रतिक्रियाः प्रतिकारः चिकित्सा अस्तिति क्रियाशेषः। क्षोभे शोक क्षोभे शोकेन मन्युना च यशोभः। चाञ्चल्यम् तस्मिन् शोकाधिक्य प्रयुक्तः प्रकृति विपर्यासे हृदयम् चेतः प्रलापैः परिदेवैनैः एव च धार्यते रक्षते। अत्र दृष्टान्तोऽलङ्कारः शोकोवृतम्। टिप्पणी: उत्पिण्डे उद उपसर्ग वीरधातु पीड धातु घय प्रत्यय भावे अर्थे परिवाह परि उपसर्ग बह धातु घय प्रत्यय विभक्ति कार्यम्। अत्र उपसर्गस्य घयमन्युस्य बहुलम् इत्यनेन वैकल्पिको दीर्घ पक्षे परिवाह तटाकस्य तड़ाग तड़ाग तथा तटाक ये तीनों शब्द तालाब के लिए प्रचलित है। प्रतिक्रिया प्रति उपसर्ग क्री धातु स प्रत्यय विभक्ता प्रत्यय विभक्ति कार्यम्। तालाब अथवा बाग बांध जब जल से लबालब भर जाते हैं प्रवाह का वेग संभालना कठिन हो जाता है तब पीछे की तरह उसके बगल से एक नाली निकाल दी जाती है। उस नाली द्वारा बढ़ा हुआ एक्सेस जल यानी अधिक जल बांध से बाहर निकाल देते हैं। इससे बांध टूटने से बच जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति का हृदय शोक से क्षुभित हो उठता है उस समय जोरों से रोना ही एकमात्र हृदय को बचाने का साधन होता है। जो व्यक्ति संकोच अथवा शिष्टाचार के दबाव में रोते नहीं है चुप रह जाते हैं उनके हृदय की गति के रुक जाने की खतरा उपस्थित हो जाती। शब्दार्थ: विशेषतः विशेषकर बहु प्रकार कष्ट अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त जीवलोक संसार। टीका: विशेषतः इति विशेषतः विशेष रूपेण बहु प्रकार कष्ट बहवः अनेके प्रकाराः भेदाः यस्मिन् तत् बहु प्रकारं तादृशं कष्टं दुःखं यस्मिन् सः जीवलोकः मनुष्यलोकः। श्लोक नंबर 30 पृष्ठ संख्या 250। इदं विश्वं पाल्यं विधिवदं अभियुक्तेन मनसा
प्रिया शोको जीवम कुसुमम इव धर्मो गलाप्यति ग्लप्यति स्वयं कृत्वा त्यागम विलप्पनम विनोदो अभ्युसुलभम स्तनद्याम इक्ष्वासो भवति ननुलाभो हिरुदितम। हिंदी। सावधान, मन से यह संसार विधि पूर्वक पालनीय है, अर्थात सावधान मन से इस संसार का पालन करना है। जिस प्रकार धूप धूल को कुम्हला देती है, उसी प्रकार प्रिया विषयक शोक राम के जीवन को सुखा रहा है। स्वयं परित्याग करने के विलाप के द्वारा मन को हल्का करना भी सुलभ नहीं है। फिर भी आज तक राम प्राण धारण किए हुए हैं, अतः विलाप करना भी लाभकारी है। विशेष राम इस सबके समक्ष सर्वत्र प्रकट रूप से विलाप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें विलाप करते हुए देखकर लोग कहेंगे कि देखो दिखावे के लिए इन्होंने सीता को निकाल तो दिया, किंतु अब पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं। कष्टम भुकष्टम दुख है, बड़ा दुख है। अन्वय अभियुक्तेन मनुषा इदं विश्वं विधिवत पाल्यं धर्मः कुसुममायैव प्रियाशोकः जीवं लपयति स्वयं त्यागं कृत्वा विल्पविनोद अपि असुलभः तत अद्यपि ओक्ष्वास भवति ननुरोदितं लाभः हि। शब्दार्थ अभियुक्तेन सावधान, मनसा मन से इदं यह विश्वं विश्व पाल्यं पालनीय है, पालन करने के योग्य है। धर्म धाम कुसुमम फूल को ईव जैसे प्रयासों का प्रिया सीता विषयक शोक जीवम जीव को गलपयति सुखाद रहा है, स्वयं खुद अपने आप त्यागम त्याग कृत्वा करके विलपन विनोद विलाप के द्वारा मन को हल्का करना आप भी असुलभ सुलभ नहीं है। तथापि अद्यपि यह भवति हो रहा है, ननु अतः निश्चय ही रोदितम रोना विलाप अभलाभकारी अस्ति है ही, यह पादपूर्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। टीका इदम विश्वम इति अभियुक्तेन अविहितेन सावधानेन वा मनसा हृदयेन इदम एतत विश्वम जगत विधिवत यथा शास्त्रम पाल्यम पालनीयम धर्मया तप कुसुम इव प्रसुनिम प्रियाशोकः सीता विरु विरा दुखम जीवनम जीवम प्राणानाम इत्यर्थ कल्पयति शेषम स्वयं स्वेच्छाया त्यागम सीता निर्वासनम कृत्वा विधाय विलपयति विनोद विलपनेन उच्चै हृदनानाम दिन विनोद शोको प्राह दानम अपीशुलभ असुलभ दुर्लभ तथापि अद्यपि संप्रति अक्षास प्राणाधारणम भवति जायते ननु निश्चितं रुदितं रोदनं राजस्य रामस्य लाभ लाभाय वर्तते इति पादपूर्तौ। अत्र उपमा परिणामस्य अलंकारौ शिकारणे छन्दः टिप्पणी पाल्यं पाल उपपद प्रणेत धातु विभक्ति कार्यं विधवत विधे महति तानम इति वृते वति प्रत्यय अभियुक्तेन अहि उपपद युज धातु तत्यय विभक्ति कार्यम विनोद विउपसर्ग नुज धातु गण प्रत्यय विभक्ति कार्यम असुलभ न सुलभ असुलभ सुपसर्ग लभ धातु खल प्रत्यय ईस दूस सुस कृक्षा कृक्षार्थे सुखल इत्यर्थे खल प्रत्यय उक्ष्वास उद उपसर्ग स्वस धातु गण प्रत्यय विभक्ति कार्यम। इस श्लोक में उपमा और परिणाम अलंकार तथा शिखरण छंद है। छंद का लक्षण रसई हरुद्रक्षिणा यमनम बदाहया शिकारणे। श्लोक नंबर 31 पृष्ठ संख्या 250। दलत हृदय शोकोद्वेगाद द्विधातुनम विद्यते वातिविकलः कायो मोहम न मुंचति चेतनाम ज्वलयति तनुमन्धरादाहम करोति न भस्मसात प्रारति विधि मक्ष देवी न कृष्टस्तति जीवितम। हे भगवन्तः पौर जानपद। हिंदी। हृदय शोक के उद्वेग के कारण फट रहा है, किंतु दो टुकड़ों में विभक्त नरी हो रहा है। शोक से विह्वल शरीर मूर्छित हो रहा है, किंतु चेतना को नहीं छोड़ रहा है। आंतरिक संताप शरीर को जला रहा है, किंतु जलाकर राख नहीं कर रहा है। मर्मस्थल को विदने वाला भाग्य प्रहार कर रहा है परंतु जीवन को सर्वथा नष्ट नहीं कर रहा है। हे महानुभाव पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों अन्वय अभियुक्ते न मनसा अभियुक्त अन्वय हृदय शोकद्वे दलितो तो द्विधा विद्यते विकलः कायम्यहम् वहति किन्तु चेतना मन मुञ्चति अन्तर्दाहतनु जनयति तु भस्मसात् न करोति मर्मक्षेदी विधि प्रहरति किन्तु जीवितं न कृतकृन्तति। हृदय शोकोद्वेगात् शोक के उद्वेग के कारण दलति फट रहा है तु किन्तु द्विधा दो टुकड़ों में नहीं विद्यते विभक्त नहीं कर रहा है। मूर्छित विकलह विह्वल काय शरीर मोहम मोह को मूर्छा को वहति धारण कर रहा है अर्थात मूर्छित हो रहा है किंतु परंतु वेतना नाम चेतना चेतना नाम चेतना को नहीं मुंचति अंतराय आंतरिक संताप तनम शरीर को जलपयती ज्वलयती जला रहा है किंतु भस्म सात जलाकर राख नहीं कर रहा है करोति कर रहा है। मर्मक्षेदि मर्मस्थलों को विदने वाला विधि भाग्य विधाता प्रहरति प्रहार कर रहा है किंतु जीवितम जीवन को नहीं कृंतति सर्वथा नष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है दलत इति हृदयम चेतम शोकोद्वेगात शोकस्य इष्टजन वियोगः जनित मन्युः उद्वेगात उद्वेगान्तः दलति स्फुटित तो किन्तु द्विधाद्वाभ्याम प्रकाराभ्याम न विद्यते न भिन्नं भवति पृथक् कारणेण सकल द्वयम् न भवति इत्यर्थः विकलं विह्वलः शोकन् इति शेषः कायः शरीरं मोह मूर्छां वहति धारयति किन्तु चेतनां संज्ञां न मुञ्चति न त्यजति अन्तर्दाह अन्तःकरणां तनुम शरीरं ज्वलयति संतापयति किन्तु भस्मसात् भस्मीभूतां न करोति भस्मदा करिष्यत् तरहि एकादृशो विरह संतापो नाभिभविष्यदिति भावः मर्मक्षेदि मर्माणे जीवत्यस्थानानि छिन्नत इति कृतं कृन्तत इति मर्मक्षेदि विधि दैवं प्रहरति प्रहारं करोति किन्तु जीवितं जीवनं न कृन्तति न छिन्नति। अत्र विशेषोक्तिरलङ्कारः हरिणी छन्दः टिप्पणी उद्वेगात् उद उपस उद उपस उद उपपद विधातु घय प्रत्यय पंचमी भक्ति नमस्म सात भस्मन उपपद सात धातु मर्म क्षेदि मर्मन उपपद इच्छित धातु ऋणी प्रत्यय भक्ति कारण दलति इति हृदय इति यह श्लोक मालती माधव में भी इसी प्रकार से आया है। इस श्लोक के चारों चरणों में चार विशेषोक्ति अलंकार है। कारण के होने पर भी जहाँ कार्य नहीं होता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। श्लोक में प्रयुक्त हरणी छंद का लक्षण नमस्र नस मर शलाग सड़वय दे हरिणी ही मता। श्लोक नंबर 32 पृष्ठ संख्या 252 नकीलं भवताम दिव्यां स्थानं गृहे अभिमतं ततः ततस्त्रिणम् इव बने शून्ये त्यक्ता न चास् अप्यश्नम् शोचिता चिरपरिचितास्ते ते भावास्तथा द्रवयन्ति माम् इदं शरणैरथा अस्माभिः प्रसीदत इरुद्यते वासन्ति स्वगतम् अतिगम्भीर रमापूरणम् मन्युभारस्य प्रकाशम् देवतिक्रान्ते धैर्यम् अवलम्ब्यताम् राम किमुच्यते धैर्यम् इति हिंदी। देवी सीता का घर में रहना आप लोगों को पसंद नहीं था अतः वह निर्जन वन में तिनके की तरह छोड़ दी गई और उसका शोक भी मैंने नहीं किया। चिर परिचित वे पदार्थ मुझे अत्यधिक द्रवित कर रहे हैं। आज असहाय होकर हमारे द्वारा रोया जा रहा है अर्थात असहाय होकर मैं रो रहा हूँ आप लोग प्रसन्न हैं। विशेष राम के कहने का भाव यह है कि सीता को घर से निकलवा कर आप लोगों की इच्छा पूरी हुई अतः आप लोग प्रसन्न हो। वासंती अपने आप शोक के भार की पूर्णता अत्यंत गंभीर है अर्थात राम के हृदय में अगाध शोक सागर लहरा रहा है। प्रकट रूप से महाराज बीती बातों के संबंध में धीरज धारण करें। राम क्या कहा धैर्य रखिए। अन्वय दिव्या गृह स्थानम भवताम अभिमतम कीलम ततः शून्य वने तृणम इव त्यक्ता न चण अनुशोचिता अपि चिरपरिचिताः ते भावाः माम् तथा द्रव्यन्ति अद्य असरणैः अस्माभि हृदयं रुद्यते प्रसिद्धत शब्दार्थ देव्याः देवी सीता का गृहे घर में स्थानम रहना भवताम आप लोगों को न नई अभिमतम पसंद था कि यह निश्चय सूचक अव्यय है तथा उसी कारण से शून्य निर्जन बने वन में तृणम तिनके की इव तरह त्यक्ता छोड़ दी गई छ और न नहीं अनुसोचिता सोची गई चिंता की गई अपि भी चिरपरिचिता चिरपरिचित ते वे भावा पदार्थ माम मुझे तथा अत्यधिक द्रव्यंति द्रवित कर रहे हैं अद्य आज असरणाई है असहाय अस्मा भी हमारे द्वारा इदम यह रुद्यते रोया जा रहा है प्रसिद्धत आप लोग प्रसन्न हो ठीक है नकिल इति दिव्या आर्याया सीताया गृहे भवने स्थानम स्थिति भवताम युष्माकम न अभिमतम अनाभिष्टम किल इति दाण्डार्यै प्रसिद्धौ वा ततः तस्मात् कारणात् शून्ये निर्जने वने अरण्ये तृणम् इव घासम् इव त्यक्ता निसारिता च किन्तु नानु ननु अशोचिता नानुतापम् नापि संभाविता अपि च तदर्थम् अनुतापम् इत्यर्थः पूर्वानुभूता इत्यर्थः भावाः पदार्थाः माम रामम् तथा तेन प्रकारेण द्रव्यन्ति संतापयन्ति अद्यः संप्रति असरणैः असहाय अस्माभिः मया रामेण इत्यर्थः एतत् रुद्यते विलापः क्रियते प्रसिद्धत सूर्यं प्रसन्न भवत अत्र उपमा विशेषोक्ति अलंकारश्च हरणिछन्दः टिप्पणी परौ जनपदा पूर्वासी कहते हैं नगर में निवास करने वाले को और जनपद कहते हैं जनवादी जनपदवासी को अथवा गांव के निवासी को पोरा पुरपलस आद्य वृद्धि विभक्तिश्च जनपदा जन उपपद अर्धातु अधिवृद्धितस्तया विभक्ति कार्यम अभिषम अभिमतम अभिउपपद मन धातु क्या प्रत्यय विभक्ति कार्यम अनुसोचिता अनुपसर्ग सुचिधातु ऋच प्रत्यय कत प्रत्यय विभक्ति कार्यम ताप प्रत्यय भाव भूधातु घ प्रत्यय विभक्ति कार्यम इस श्लोक में तृणम एव में उपमालंकार है परित्याग रूपी कारण के होने पर भी शोक न करना इस कार्य भाव के कारण विशेषोक्ति अलंकार है छंद के लक्षण के लिए पीछे के श्लोक की टिप्पणी देखिए सवदार अति गंभीरम अत्यंत गंभीर है अपूर्णम अपूर्णम अपूर्णता मन्यु भारस्य शोक के भार की अतिक्रांते विति बातों के संबंध में धैर्यम धीरज अक्लम्ब्यम ताम धारण करें टीका वासंतिति अति गंभीरम अति गूढ़म अपूर्णम परिपूर्णता मन्युभारस्य शोकराशेः अतिक्रान्ते अतिते विषये धैर्यम चितस्थन धैर्यम अवलम्यताम आश्रिताम टिप्पणी अतिक्रान्ते अति कम क्रम प्लस कत सप्तम एकवचनम विभक्ति कार्यम